हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज 11 दिन पर हम उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे आपके वैष्णव के आशीर्वाद के द्वारा। श्रीमद् भागवतम में 2 अध्याय, ये अध्याय और अगला अध्याय, विशेष करके श्री रामचंद्र के गुण बताए गए हैं और यह इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। श्री रामचंद्र के गुण बताने के बाद भी सीता का उल्लेख आ रहा है अगले श्लोकों में, अगले अध्याय में और उल्लेख आएगा सीता का। तो जो सीता है उसको आदर्श स्त्री माना गया है और आधुनिक भारतीय समाज में वैदिक साहित्य वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में बहुत प्रचार होता है, अपप्रचार होता है। और क्योंकि रामायण इतना आदर्श ग्रंथ है उसमें श्री रामचंद्र का चरित्र इतना आदर्श है कि उसमें दोष ढूंढना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण जब रामायण महाभारत लीला करते हैं तो उसमें बहुत से वाद विवाद होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो हमारी धारणाएं जो है हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं ताकि हम एक ऊंची समझ पे पहुंच सके। तो साधारणतः भगवान कृष्ण जो है, भगवान रामचंद्र जो है वो आदर्श कार्य करते हैं, पर फिर भी कुछ कुछ ऐसे प्रसंग है, ऐसे घटनाएं हैं रामायण में भी जिसके कारण श्री रामचंद्र की निंदा होती है। तो आज तो इसमें से एक विशेष है कि जो सीता देवी के प्रति उन्होंने अन्याय किया, कैसे पहले उनको अपनी परीक्षा करने को लगाए, उसके बाद में उनको अवनवास भेज दिया, ये बड़ा अन्याय था। तो वास्तव में इस प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में कभी नहीं आए। भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के विचार बनते, न केवल वैष्णव थे, मायावादी भी थे और फिर न्याय के न्याय तर्क का प्रतिपादन करने वाले लोग थे, जो वैशेषिका है, सांख्य है, योग है, ये सब थे। पर इनमें से कोई भी इस प्रकार से आलोचना नहीं करता है रामचंद्र। ये सब आलोचना कब शुरू हुई, जो पाश्चात्य मूल्य जो है जब से आए और उसके दृष्टि से जब रामायण को देखा जाता है तो समस्या आती है। तो एक विख्यात क्रिश्चियन मिशनरी था, वो लिखा उसने लिखा है कि जितने भारत जितने ग्रंथ है उनमें से सबसे अधिक अगर हिंदू मन पर प्रभाव हुआ है किसी ग्रंथ का वह रामायण है। भगवदगीता जो ग्रंथ है वो तत्व ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर तत्व ज्ञान ज्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं। और महाभारत भी बड़ा आकर्षक है, पर रामायण जो है वह बहुत लोकप्रिय है। और इसलिए तो उसने बताया कि अगर हमें हिंदू लोगों की श्रद्धा वैदिक शास्त्र वैदिक संस्कृति उठानी है तो इस रामायण का खंडन करना चाहिए। तो उन्होंने भी अनेक प्रकार से खंडन किया क्रिश्चियन लोगों ने, खास करके जो आधुनिक संस्कृति आई है वह ऐसे दिखाती है कि सबको अपने अपने राइट्स होने चाहिए, सबको अपने अपने अधिकार होने चाहिए। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान केवल पाश्चात्य देशों में नहीं बनाया गया है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य लिखा है वह राजनीतिक विज्ञान के बारे में ही है, राजनीति के बारे में है। और भीष्म पितामह ने जो राजधर्म लिखा हुआ है बताया गया है, वास्तव में वो महाभारत में इतना विशाल है। महाभारत का शांति पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है सब पर्वों में से, क्यों? क्योंकि जब इतना उपदेश भीष्म पितामह अपने मृत्यु शैया पर जो युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं और वो सारा उपदेश को 3-4 श्लोकों में भागवतम में संक्षिप्त बताया कि उन्होंने इस तरह से अलग अलग प्रकार के उपदेश किया और फिर जो भक्ति का उपदेश अंत में दिया उसके बारे में उल्लेख भागवतम में आता है। तो राजधर्म जरूर है, तो राजधर्म में राजधर्म का ज्ञान वैदिक शास्त्रों में भी है, पर राजधर्म में हमें दो पहलू होते हैं, एक है अधिकार और दूसरी है जिम्मेदारी, राइट एंड ड्यूटीज। जैसे जिम्मेदारी या कर्तव्य, जो अधिकार और कर्तव्य। तो आधुनिक समाज जो है वह अधिकार के पीछे बहुत लगा है कि हम हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, और जो कर्तव्य है वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हमारा जो देश राष्ट्र है, रेलवे है, रास्ते है, क्लीन होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, और सब बोलते हमारा अधिकार स्वच्छ होने चाहिए, पर वो जिम्मेदारी है स्वच्छता रखने की कोई लेता नहीं, सब लोग कचरा डालते रहते इधर उधर। तो क्या होता है, जो अधिकार है और जो कर्तव्य है दोनों जब साथ में होते हैं तो सरकार जिद चल सकती है। तो आधुनिक समाज जो है वो अधिकार पे बहुत ज्यादा जोर देता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये सीता देवी का अधिकार था कि उनके प्रति ऐसा अन्याय हुआ तो उन्होंने उसको प्रतिकार करना चाहिए था, और क्योंकि उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उनको ऐसे जंगल में भेज दिया, उनको वनवास दे दिया, उनको अग्नि परीक्षा लगाई, तो उसके कारण जो भारतीय स्त्री है उनको एक गलत आदर्श मिल गया है, और एक गलत आदर्श मिल गया है उसके कारण क्या हो गया है, भारतीय संस्कृति का बड़ा अधोगति हो गई। तो एक बहुत बड़ा है हमारे वक्त जो कलकत्ता में एक बड़ी कंपनी में काम करते, तो रामनवमी के दिन उन्होंने उनके कंपनी में एक प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में गुणगान करते हुए एक छोटा सा नोटिस लगाया, जैसे नोटिस बोर्ड होता है वैसे इंटरनेट का भी नोटिस बोर्ड होता है, तो कंपनी में सब लोग पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक नोटिस लगाया और 40 लोगों ने उसे प्रतिकार किया कि रामचंद्र ने ऐसे किया ऐसे किया, उनका कैसे आप गुणगान कर सकते हैं। और जो वो जो अध्यक्ष था नोटिस बोर्ड का, उनको बोला है, उन्होंने उनको बताया भक्त को कि ये ऐसे विवादास्पद विषयों पर आप पुनः ऐसे नोटिस मत लगा। तो बोले भी क्या प्रभु जी रामचंद्र के रामनवमी का दिन है, उनका गुणगान करना है, उसमें विवादास्पद क्या है। तो क्या होता है, हम जो है इसको हम जो प्रचार करते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को हम आकर्षित करते हैं, और ये लोगों को पहले से थोड़ी श्रद्धा है, और जब हम भक्ति के प्रभु जी रामचंद्र की लीलाओं के बारे में बोलते हैं मधुरता से, तो वो आकर्षित जाते हैं। पर जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार का सर्कल जो वर्कुल है जो चक्र है उसके बाहर बहुत से लोग हैं, और ऐसे लोगों पर बहुत से ऐसे चीजें प्रभाव कर रहे हैं जो वैदिक संस्कृति में उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं। तो हम इसके बारे में 3 स्तर पर चर्चा करेंगे, क्या माता पिता पर अन्याय हुआ था, एक कर्तव्य के स्तर पर, दूसरा भक्ति के तत्व ज्ञान के स्तर पर, और तीसरा रस के स्तर पर। तो वास्तव में जब सबसे पहले आपको सबको पूरी कहानी पता है तो मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, पर सबसे पहले ये भ्रांत धारणा है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता को वनवास में भेजा, को वनवास भेज दिया, को एग्जाइल मतलब वनवासी, को वनवास बैनिश कर दिया, एग्जाइल कर दिया, उनको राज्य से बाहर करके वनवास में भेज दिया। वास्तव एक पूर्णतः भ्रांत धारणा है, प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता को वनवास किया नहीं, क्योंकि वनवास का मतलब क्या है ये समझना चाहिए सबसे पहले। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र का जब वनवास हुआ तो वनवास का मतलब है कि उनको बताया गया कि आप जंगल में जाओ और ऐसी जगह जाओ वहां पे कोई मानव नहीं रहते हैं, जंगल में जाके आपको रोटी कपड़ा मकान कोई भी इंतजाम नहीं होना चाहिए, तो सारी कुछ भी संपत्ति नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, और कोई भी शारीरिक से शारीरिक में से जरूरतें मूलभूत जरूरतें वो भी नहीं है, तो उसको वनवास कहते हैं। और जब श्री रामचंद्र जब जा रहे थे तो दशरथ महाराज बोले कि वो इससे भावुक हो गए, वो बोले कि कैसे को राज्य चाहिए तो राज्य देने को, सुमंत्र को बोले सुमंत्र हमारे सारे सैनिकों को बोलो कि वे सब साथ रामचंद्र के जाए, मैं भी जाऊंगा, और उन सैनिकों को बोलो कि सारी जो राज्य का खजाना है वो भी साथ में लेके जाए, हम जंगल को अयोध्या बना देंगे और अयोध्या जंगल बन जाएगा, और कैकई इस जंगल रूपी अयोध्या का राज्य कर सकती है। तो तभी कैकई बड़ी क्रोधित होकर बोलती है कि वनवास का मतलब जंगल में रहना है, वनवास का मतलब नहीं कि जंगल में जाकर राज्य बना के वहां पर रहना है, तुम अपने वचन से झूठे नहीं जा सकते। तो जैसे जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जब भरत आते हैं वापस, तो जब उनको पता चलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास में भेजा है, वनवास तो इतनी कठोर सजा है, यह मृत्यु दंड से नीचे की एक सजा है बस, और किसके किसको दी जाती है, वो अगर कोई राजद्रोही होता है या कोई ब्राह्मण पे आक्रमण करता है या वो स्त्री पे आक्रमण करता है
तो ऐसे ही बहुत ही घृणित पाप करने वालों को एक सजा दी जाती है। मैं तो ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकता कि प्रभु श्री राम मेरे जो भ्राता है रामचंद्र इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तुमको वनवास में क्यों भेजा? तो वनवास का मतलब है कि राज्य के बाहर जंगल में जाकर कोई भी सुविधा नहीं, सुविधा छोड़ो कोई भी जरूरतें नहीं, ऐसी जगह भेजता। तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सीता को भेजा जंगल तो क्या इस तरह से भेजा? उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को बोला साथ में जाओ और सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दो। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो था प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में ही था और वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उस समय बहुत से ऋषि मुनि जो होते थे वो विवाहित भी होते थे, तो ऋषि पत्नी भी होती थी। इसलिए भागवत में उल्लेख आता है कि गुरु और गुरु पत्नी। तो जो वहां पे गए तो वाल्मीकि ऋषि से जब सीता देवी मिली तो उन्होंने अपने जो वरिष्ठ स्त्रियां थी उनको बुलाया और उनको बताया कि ये सीता वास्तव में ये सीता आई वहां पे। तो वाल्मीकि ऋषि ने अपने शिष्य को बुला सीता देवी की आरती की, कसावत के लिए लक्ष्मी देवी स्वयं आई है। और उन्होंने अपने सारे जो वरिष्ठ स्त्रियां थी उनको बुलाया, जो ऋषि पत्नियां वगैरह थी उनको बुलाया कि आप सीता देवी का उसी तरह से सेवा और रक्षण करो जैसे कि आप मेरा कर रहे। और उन्हें बताया कि ये वास्तव में लक्ष्मी देवी है, ये प्रभु की अद्भुत लीला है, इसके कारण वो यहाँ पे आई है, पर ये प्रभु की अद्भुत लीला है, ये हमारा बड़ा भाग्य है। इसीलिए एक उन्हें बोला कि आप जैसे मेरा आदर करते हैं उसी तरह से उसका आदर करना चाहिए, और दूसरा होता है कि इसकी आप इस तरह से देखभाल करो, इसको इस तरह से प्रेम दो जैसे वो आपकी बेटी हो। तो वास्तव में सीता देवी जो थी वो उनको जो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा गया उसको वनवास नहीं कह सकते, एक तरह से वनवास है। क्यों? क्योंकि वो वन में रह रही थी, पर वन में जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र गए थे वैसा वनवास नहीं था। वो उनके सारे जरूरतों का इंतजाम हो गया था, और उनको न केवल जरूरतों का इंतजाम था, उनको उनके साथ वो और से वरिष्ठ स्त्रियां थी और संग था जिसमें वो रह सकते थे। तो इसीलिए सबसे पहले ये वनवास नहीं है। वनवास नहीं है तो ऐसे किया क्यों उनके साथ? तो कहते कि अन्याय। तो सबसे पहले हमें होना चाहिए कि अगर हम अन्याय की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अन्याय तो प्रभु रामचंद्र के साथ हो गया। उनकी तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उनको जंगल में भेज दिया गया। तो रामायण और महाभारत इन दोनों का एक मूल जो सीख है, मूल लेसन जो है क्या है कि अन्याय इस दुनिया में सबके साथ होता है। तो अन्याय पर प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए उसका आदर्श उदाहरण इन शास्त्रों में दिया गया है। तो वास्तव में हम तत्वज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, क्योंकि हमारे सामने सबको जो भी होता है हमारे कर्मों का फल है। पर अगर हम इस जन्म की दृष्टि से देखेंगे तो वो अन्याय लग सकता है। अगर कोई सुनामी आ जाती है जैसे जापान में आएगी, हजारों लोगों की मृत्यु होगी, तो हमें लगता है कि ये तो शायद इस जन्म में उन्होंने पाप नहीं किया होगा, तो वो ऐसा अन्याय क्यों हुआ? तो हम तत्वज्ञान के स्तर पर बोल सकते हैं कि कर्म के नियम है, सबको अपने कर्मों के फल मिलता है, वो सत्य है। पर साथ साथ उससे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमारे जीवन में आपत्ति आ गई है, भले ही हमें अन्याय लगती है, तो उसका प्रतिक्रिया कैसे करना है, और उसे प्रतिक्रिया कैसे करनी है, इसका आदर्श उदाहरण रामायण में दिया गया है। और जो आजकल अधिकार की बात करते हैं वो भी कभी अनजानी नहीं थी। वास्तव में लक्ष्मण जब प्रभु श्री रामचंद्र वनवास जाने के तैयार हो जाते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं कि वास्तव में कि तुम्हारा ही राजा बनने का अधिकार है, और कोई अगर तुम्हें रोकेगा तो मैं उसको यम के राज में भेज दूंगा और तुम अपना राजा अधिकार पूरा स्वीकार कर लो। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि वास्तव में मेरी एक ही इच्छा है, मुझे राज्य इसीलिए स्वीकार करना था ताकि जो मेरे प्रिय गण है उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनको पसंद कर सकूं। तो मेरे जो प्रिय पिताश्री है अगर उनको मैं अपसन्न कर रहा हूं तो मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर लक्ष्मण अगर शांत नहीं होते, लक्ष्मण बोलते हैं कि वास्तव में हाँ जो पिता के आदेश का पालन करना अच्छा है, पर जो हमारे पिता है वो अभी पिता के रूप में कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, वो एक कामुक, वो एक लोभी स्त्री के चंगुल में फंस गए हैं और काम से पागल हो गए हैं।
लक्ष्मण अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं
और काम वास्तव में पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के आदेश का पालन करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऋषि रामचंद्र बोलते हैं कि वास्तव में वो थोड़े से क्रोध हो जाते, थोड़े से खुश हो जाते थे, लक्ष्मण इस प्रकार के बच्चे तुम्हारे जीवन पे कैसे आए, कैसे तुम इस तरह से अपने पिताजी के बारे में बोल सकते हो और अपनी माँ के बारे में, क्या तुम जानते नहीं कि क्या तुम्हें याद नहीं है ये किस तरह से कह के हम सबसे प्रेम करती थी, मुझे तो कहके के प्रेम में और मेरी माँ का कौशल्या के प्रेम में कभी कोई फर्क नहीं दिखा, दोनों को मैं अपनी माँ मानता था, उनका जो प्रेम था वह तो एक निर्मल गंगा के समान हमेशा हमारे हमारे ओर बहता था। तो लक्ष्मण अभी तक रोए थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक रात में सारी गंगा सूख कैसे गई।
तभी प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसी अनेक चीजें होती है जो हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते।
जब मैंने देखा कि कैकेयी ने इस प्रकार की मांग की है तो तभी मैं समझ गया कि ये नियति का कार्य है, ये दैव की इच्छा है, क्योंकि उसके बिना कैकेयी की विचारधारा इस तरह से कभी बदल नहीं सकती है। तो अगर ये दैव की इच्छा है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो
लक्ष्मण अभी तक शांत नहीं हो रहे,
केवल कायर लोग ही अन्याय को दैव के रूप में बोलकर स्वीकार करके उसको चुप बैठ जाते हैं।
जो क्षत्रिय लोग हैं, जो मर्द लोग हैं आजकल के अक्सर, जो वो
अन्याय का प्रतिकार करते हैं, तो हमें कायरों की तरह अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो दैव को बोल, दैव के नाम पे। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि वास्तव में अन्याय या न्याय ये मेरा विचार अपने और नहीं, मेरा विचार है दैव क्या है और दैव क्या नहीं है। मेरा एक ही विचार है इस समय कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे पिताजी जो है अगर उनकी ये इच्छा है, उन्होंने वचन दिया है, तो उनके वचन को पालन करना यह मेरा आदर्श है। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र विस्तार पूर्वक से वर्णन करते जाते हैं कैसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर उसके बारे में चर्चा हम अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि अन्याय इस दुनिया में सबके साथ होता है। एक दृष्टि देखा जाए, इस दुनिया से दृष्टि से कभी किसी को बीमारी आ सकती है, कभी हम नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी खत्म हो जाती है, हमारा रिटर्न चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते अन्याय हुआ है। तो प्रभु अगर सीता देवी के साथ अन्याय हुआ है तो प्रभु श्री रामचंद्र के साथ उससे बड़ा अन्याय हुआ है। अगर हम हमारे अन्याय के हमारे साथ अगर कुछ अन्याय हुआ लगता है, हमें कुछ आपत्ति है हमारे जीवन में, तो कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि मैंने पूरे जन्म में बहुत से बुरे कर्म किए होंगे, और यह कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है सोचना, क्योंकि इस जन्म में हमने बुरे कर्म किए, तो हमारी मनोवृत्ति को हम अभी देख सकते हैं, कम से कम मेरी मनोवृत्ति को मैं देख सकता हूँ। तो हमने बुरे कर्म किए हैं इसीलिए हमें फल मिल रहे। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जैसे भगवान सीता देवी उनके भाई हैं, लक्ष्मी देवी, उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी उनको ऐसे जीवन में आ रहा है, तो ये वो और अधिकार से बोल सकते हैं ये अन्याय है। तो वास्तव में शास्त्र ये ही बताते हैं कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए या नहीं, वास्तव में ये बताते हैं कि अन्याय हो या न्याय हो हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले जब अयोध्या जो मंदिर था उस पर विवाद विवाद चल रहा है, तो जब फैसला आया कि वास्तव में वो मंदिर हिंदू लोगों को दिया जाने वाला है, तो तभी एक मुस्लिम नेता ने ऐसा व्यंगात्मक टीका की, उसने कहा कि तुम इतने राम का गुणगान कर रहे हो पर जो रामायण का मुख्य सीख है त्याग वो तुमने नहीं सीखी है। और रामचंद्र ने सारा राज्य त्याग दिया था तो एक मंदिर को त्याग नहीं सकते। तो फिर उसके प्रतिकार में मैंने एक लिख लिखा था, ठीक है प्रभु श्री रामचंद्र ने राज्य त्याग दिया पर जब सीता का अपहरण किया रावण ने तो तभी सीता को त्याग नहीं किया। और त्याग की परिभाषा समझ भी चाहिए कि वास्तव में जो कर्तव्य निष्ठता है वो प्रधान सीख है रामायण की। अगर प्रभु श्री रामचंद्र राज्य त्याग देते हैं तो वो वैराग्य का लक्षण है। प्रभु श्री रामचंद्र अगर सीता को त्याग देते तो वैराग्य का लक्षण नहीं है, कायरता का लक्षण है। क्यों? क्योंकि एक हमें कर्तव्य जो है वो बड़ा जटिल है समझना, कि एक पुत्र है उसको अपने पति पिता के आदेश का पालन करना कर्तव्य है, पर एक पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पत्नी का रक्षण करे। तो अगर वो गोकुलानंद भगवान की जगन्नाथ सुंदर सुभद्रा मैया की गौर तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र ने तो तुरंत शस्त्र उठा लिया। तो उन्होंने अपने जब उनको घर से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया, तो शस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा कर्तव्य इस समय क्या है। और फिर उसी तरह सीता का अपहरण हो गया तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए, क्यों? मेरा कर्तव्य यहाँ पे क्या है? तो जो वैदिक शास्त्र है वो कर्तव्य प्रधान है, और त्याग का मतलब ये नहीं कि कायरता, त्याग का ये मतलब नहीं है कि नपुंसकता, त्याग का मतलब नहीं है कि आलस, त्याग का मतलब है कि अगर हमारा कर्तव्य करते समय कोई चीज हमें छोड़नी पड़े तो वो तैयार होनी चाहिए, उसको त्याग। तो अपने पिताजी के प्रति कर्तव्य पूरा करते समय अगर उनको छोड़ना पड़ा राज्य को, तो भविष्य रामचंद्र स्वीकार कर लिया। तो वास्तव में इस तरह से भविष्य रामचंद्र का कर्तव्यनिष्ठता दिखाते हैं, उसी तरह से पिता देवी भी कर्तव्यनिष्ठता दिखाते हैं। तो वास्तव में भविष्य रामचंद्र को ऐसे करने की क्या जरूरत थी कि सीता को भले उन्हें वनवास से नहीं भेजा तो उन्होंने घर से बाहर भेज दिया, जंगल में भेज दिया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम भेज दिया, तो ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तो वास्तव में अलग अलग प्रकार के द्वंद्व आते हैं मानव के जीवन में। इंग्लिश में ये कहते हैं मॉरल क्राइसिस और दूसरा है एथिकल क्राइसिस। जो मॉरल क्राइसिस मतलब ये इसमें है जो कि एक जो चुनाव है नैतिक है, दूसरा अनैतिक है। जैसे रावण जो था उसको एक पर्याय था कि सीता का अपहरण न करे, जैसे मरीच और आदि लोग जो अकम था होता उसको बोल रहे थे कि आप उसको अपहरण मत करो। तो एक नैतिक चुनाव है, दूसरा अनैतिक चुनाव है, तो एक प्रकार का द्वंद्व है ऐसा। तो दूसरा द्वंद्व है कि दो नैतिक चुनाव है और उनमें से एक चुनाव है, तो उसके समय ऐसे चुनते समय जो धर्मज्ञ जो है व्यक्ति को बड़ा धर्मज्ञ होना पड़ता है, और कौन सा धर्म ऊंचा धर्म है और कौन सा धर्म नीचा धर्म है समझना चाहिए। अच्छा पुराण में वो विख्यात कहानी आती है कि एक ब्राह्मण ने हमेशा व्रत किया था कि वो हमेशा सत्य बोलेगा, सत्य बोल रहा है तो एक रस्ते पे चौराहे पे बैठ के वो अपना शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। तभी एक गाय दौड़ते दौड़ते आ गई, और दो जाएगा रास्ता था, एक इधर था एक इधर था, तो गाय इधर चली गई, तो उसके पीछे पीछे एक बच्चे कसाई आ गया कि हाथ में तलवार, बोले गाय यहाँ पे गई क्या, कहाँ गई? तो अभी वो धर्म संकट में पड़ गया, क्या करूंगी, अगर बताऊंगा तो गाय की हत्या हो जाएगी, तो गाय का रक्षण नहीं होगा, वो भी तेरा धर्म का नाश हो जाएगा, और बताऊंगा और नहीं बताऊंगा तो असत्य बोलूंगा, असत्य बोलूंगा तो सत्य पर चला जाएगा। तो इसलिए क्या किया उसने, उंगली दिखाई, तो उंगली दिखाई तो ये सारी कहानी है। तो अगले जन्म में क्या हो गया, उसका हाथ दिखाया थे उसका हाथ कट गया। तो वास्तव में यहाँ पे दोनों धर्म है, सत्य बोलना एक धर्म है और गाय का रक्षा करना एक धर्म है। तो उसने कौन सा धर्म चुना, सत्य बोलना यह धर्म अपना, और वो चुनाव जो उस समय गलत था। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दो चुनाव करने होते, एक दोनों नैतिक है, दोनों नैतिक मूल्य के अनुसार है, पर एक नैतिक मूल्य ऊंचा है एक नैतिक मूल्य नीचा है, तो कौन सा चुनना चाहिए करें। तो ऐसी परिस्थिति जब राज्य में वापस आ गए तब वे बड़े आनंद से राज्य कर रहे थे और सीता मुझे महारानी के रूप में थी, पर तभी उनका संदेश मिला कि उनके राज्य में कुछ लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि अगर श्री रामचंद्र अपनी पत्नी जो किसी और के घर में रह चुकी है उसको स्वीकार करते हैं तो हमें भी वैसे स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर इससे क्या आदर्श रहेगा, इससे फिर जो स्त्री है उसकी पतिव्रता नहीं रहेगी, और फिर सारे समाज की हानि हो जाएगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र की निंदा हो रही थी, सीता देवी की निंदा हो रही थी, तो प्रभु श्री रामचंद्र पहले ही जानते थे ऐसे होगा, तो इसीलिए उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा करने को बोली थी। पर फिर भी उसके बावजूद ऐसे हुआ, तो प्रभु श्री रामचंद्र तभी बहुत उदास हो गए, उदास हो गए। तो उन्होंने जो एक जासूस था उन्होंने ऐसे बताया, और तो मंत्रियों ने जासूसों के बारे में पता कराया, तो एक मंत्री मतलब वास्तव मंत्रियों ने भी उसकी बहुत से दोहराया, तो बड़े हताश हो गए। फिर उन्हें लक्ष्मण को बुलाया, और जब लक्ष्मण को बुलाया तो लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र को इतना उदास उन्हें कभी नहीं देखा है। जब वो जानते थे कि जब सीता देवी का अपहरण हो गया था तभी प्रभु श्री रामचंद्र काफी उदास थे, पर आज वो उससे भी अधिक उदास नहीं थे। और ऐसे उदास होने का क्या कारण था, क्या हुआ है? और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने सब कुछ उनको बताया, और उन्हें जब लक्ष्मण ने सुना तो उनको खुद आ गया, उनका हाथ से पता तलवार में चला गया। लक्ष्मण जो है वो जो भूमिका करते हैं थोड़ा क्रोध हो जाएगा, कौन ऐसा नाथ ना बोल रहा है, मैं उसको फिर से कर दूंगा। तो श्री रामचंद्र बोले कि लक्ष्मण अभी मेरा फैसला तुम सुनो, और इसके बारे में मैं कोई और बातचीत नहीं करना चाहता, कोई बहस नहीं होगी, कोई तर्क वितर्क नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम्हें करना है। और बोले कि तुम सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण ने सुना तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा, और आदेश था उन्होंने पालन किया। तो श्री रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया? उनको यहाँ से अभी दो कर्तव्य थे, जैसे मतलब कि दो नैतिक कर्तव्य, दो नैतिक मूल्य थे। एक नैतिक मूल्य था कि एक पति है उसको अपने पत्नी का हमेशा रक्षण करना चाहिए। दूसरा एक नैतिक मूल्य था कि नैतिक कर्तव्य था कि एक राजा है उसको हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए। तो राजा का आदर्श व्यवहार क्या है? एक प्रकार का आदर्श व्यवहार है कि जो बड़े न्याय के साथ उसे राज्य करना चाहिए, जो समाज के लोग हैं उनकी जरूरत है उसको पूर्ति करनी चाहिए। ये सब तो रामचंद्र कर रहे थे। और उससे महत्वपूर्ण जो राजा का आदर्श क्या है एक आध्यात्मिक संस्कृति में, कि सारे लोग आकर राजा के सामने प्रणाम करते हैं, राजा को आदर देते हैं, पर ये राजा है उसको बलिहार के दिखाना होता है। राजा का बलिहार कैसे दिखाता है? वो दो तरह से, एक तरह से कि वो इतना बड़ा राजा है सर उसको आदर दे रहे, पर अगर कोई सन्यासी आते हैं, कोई ऋषिगण आते हैं तो वो उनके पैर धोता, उनको धोता है, उनको राज्य सिंधु बैठा है, उनका आदर करता है, उनके आदेश का पालन करता है। फिर भौतिकवादी लोग जो है वो यही देखते हैं, वो भौतिक दृष्टि से हमसे देखते हैं। तो इसीलिए वो देखते हैं कि राजा इतना बड़ा व्यक्ति है, वो साधु पुरुष का आदर कर रहा है तो वो भी आदर करते हैं, तो उस आदर से साधु पुरुष का उपदेश सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक प्रकार से वैराग्य दिखाना होता है, और दूसरे प्रकार से वैराग्य का दिखाना है कि जब भले ही वो राज्य कर रहा हो, जब उसकी उम्र हो जाए बाल को खेलना चाहिए, और जो अपने जो पुत्र है अगला जो राजा है उसको युवराज जो है उसको नियुक्त करना चाहिए राजा के रूप में। तो इस तरह से राजा को भी वैराग्य दिखाना होता है, और उस वैराग्य से ही समाज की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो राजा जो क्यों राजा जो वैराग्य दिखाता है तो उसका इतना प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि राजा के पास जो भौतिक सामग्री, भौतिक संपत्ति, जो भौतिक वृत्ति मौजूद है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं होती है। और इतना सब होने के बाद अगर राजा वैराग्य दिखाता है तो फिर भौतिकवादी लोग समझ जाते हैं कि जनसाधारण लोग समझ जाते हैं कि इतना सब होने के बाद राजा के पास इतना है जो शायद ही हमारे जीवन में मिल सकता है, इतने ऐश्वर्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद अगर ये वैराग्य दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रकार का ऐश्वर्य और भोग ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इसके परे कोई और उद्देश्य है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो जॉर्ज हैरिसन थे वो इस प्रकार से इतने विश्वविख्यात थे उस समय जब वो फेवरेट संगीतकार के रूप में मशहूर थे, तो तभी और 1985 में जुपिटर के अराउंड, जुपिटर जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह है, उसके उसके और एक सैटेलाइट, एक छोटा ग्रह मिल गया। तो फिर लोगों की डिमांड से उस जो ग्रह का नाम दिया जॉर्ज हैरिसन 818 कि उस ग्रह का नाम दिया जॉर्ज हैरिसन के नाम से, वो इतना लोकप्रिय था। और जब उसने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, जब उसने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया अपने गीतों में, हरे कृष्ण महामंत्र डाला, तो सैकड़ों के लोग, सैकड़ों वाला हजारों लाखों की मात्रा में लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ऐश्वर्य था वह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ऐश्वर्य होते हुए अगर कोई आध्यात्मिक जुड़ रहा है तो उसका जो प्रभाव होता है बहुत होता है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र भौतिक दृष्टि से अपने सब वासियों, अयोध्या वासियों का संरक्षण कर रहे थे, पर वो आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी तरफ देखते थे। इसीलिए वे दर्शाना चाहते थे कि एक वैराग्य का उभार है, और तो फिर उनको एक कर्तव्य था राजा के रूप में कि वैराग्य दिखाना, पति के रूप में दूसरा कर्तव्य था कि अपनी पत्नी का संरक्षण करना। तो ये दोनों कर्तव्य उन्होंने कैसे समन्वय किया कि उन्होंने सीता को अपने राजमहल से बाहर, जो उनके ही राज्य में पर राजमहल से बाहर, जो राजधानी के बाहर, जो वाल्मीकि महर्षि का आश्रम था, वहां से भेज दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, क्योंकि सीता देवी उनके ही राज्य में थी तो उनका संरक्षण हो गया। क्योंकि वाल्मीकि महर्षि जानते थे कि जो है श्री रामचंद्र की भार्या है, तो उन्होंने उसका संरक्षण किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य भी किया और अपने जो राज्य के वासी उनके प्रति कर्तव्य किया। और सीता देवी का क्या कर्तव्य, की कर्तव्यता क्या है, कि वास्तव में कि उनकी जो भावनाएं थी वो भी भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, कि जब प्रभु श्री रामचंद्र ने उनको इस तरह से त्याग दिया। पर जो वैदिक शास्त्र का सिखाते हैं कि भावनाएं हम सब हृदय में आती है और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो भावनाएं हैं वो हमें धर्म के करीब ले जानी चाहिए और धर्म के दूर नहीं ले जानी चाहिए। सभी भावनाएं अच्छी है। ऐसे जब भरत आ रहे होते हैं जंगल से, जंगल से चित्रकूट की ओर और सारी सेना को लेकर, तो लक्ष्मण देखते हैं और लक्ष्मण सोचते हैं कि ये भरत हम सब पे प्रहार करके हमको मारने के लिए आए, तो बहुत क्रोध रहते हैं और भरत के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। और फिर बाद में जब सत्य पता चलता है तो वो बड़े लज्जित हो जाते हैं। तो उसके बाद ये सारा जब घटना हो जाती है तो फिर लक्ष्मण एक छोटे भाई है, सभी छोटे बालक के समान पूछते हैं कि भैया मैं बहुत, अपने बड़े भाई रामचंद्र पूछते हैं कि भैया मैं इतना क्रोधित क्यों होता हूँ, ऐसी गलत फहमी हो जाती है, मैं इतना क्रोधित क्यों होता हूँ। तो फिर श्री रामचंद्र हंसते होते कि लक्ष्मण तुम बड़े भावुक हो, तुम बड़े भावुक हो। तो तभी लक्ष्मण सोचने पड़ जाते, बोलते लक्ष्मण कि भैया भावुक होना बुरा नहीं क्या? बोलते नहीं बुरा नहीं है, भावनाएं तो जीवन का अलंकार है, भावनाओं के बिना जीवन तो पत्थर के समान बन जाएगा। पर हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे कर्तव्य के करीब हमें ले आती है या कर्तव्य में भूल ले जाती है। तो जब एक हम सब अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारे हमने जो दीक्षा के व्रत लिए है उसके पालन करते समय हमें बहुत से प्रलोभन आ सकते हैं, और जो प्रलोभन आते हैं तभी भावनाएं आती हैं। पर हम विचार करते हैं कि जो भावनाएं हैं ये कर्तव्य से दूर ले जा रही है, और तभी दूसरी भावना हमें विकसित करनी चाहिए। क्या भावना है? कि अगर मैं कोई गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरुदेव अप्रसन्न हो जाएगी, जो वरिष्ठ वैष्णव अप्रसन्न हो जाएगी। और वो भावनाएं अगर हम सक्रिय करते हैं उस समय तो फिर ये जो भावनाएं हैं वो हमें भौतिक भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। तो सीता देवी जरूर दुखी हो गई, बहुत ग्लानित हो गई है तभी, पर उन्होंने क्या लिखा, कर्तव्य क्या है कि मेरे पति का आदेश निष्पादन करना चाहिए। और उन्होंने उनको बिल्कुल गलतफहमी नहीं हुई। वास्तव में अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो उनको कोई गलतफहमी नहीं थी कि प्रभु श्री रामचंद्र ने पुत्र दिया है, वो वास्तव में बोलते हैं कि तुम्हारे कर्तव्य निष्ठता इतनी महान है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, तो मुझे भी ये शक्ति दो, मैं भी मेरा कर्तव्य कर दू। तो वास्तव में ये कर्तव्य के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, तो कर्तव्य स्तर पर हम देखते हैं तो क्या है कि कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमारा कर्तव्य करने के लिए जो हमें चुनाव करना है वो हमें भाता नहीं, अच्छा ही लगता है, नापसंद होता है हमें, और वो कर्तव्य के स्तर पर स्वीकार करना। अगर प्रभु श्री रामचंद्र को को आनंद हो रहा था सीता देवी को वनवास से भेजने के लिए, तो प्रभु श्री रामचंद्र तुरंत किसी और स्त्री से विवाह कर सकते थे, उन्हें कभी भी विवाह नहीं किया। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने बताया कि वास्तव में अगर आपको यज्ञ करना है तो उनको बाद में अश्वमेध दीक्षित राम, अश्वमेध यज्ञ करना था, तो बोले कि अश्वमेध यज्ञ करना है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं, जो गृहस्थ होता है राजा होता है, राजा के साथ रानी होनी चाहिए। इसलिए बोला या तो आप सीता को वापस लेके आओ या पुनः विवाह करो। तो ऋषि रामचंद्र बोले दोनों संभव नहीं है, सीता को वापस नहीं जा सकता और पुनः भी विवाह नहीं कर सकता। तो बोले कि फिर यज्ञ नहीं कर सकते हम, आप अकेले नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला आप विचार करो, ब्राह्मण को बोला, और फिर उन्होंने बताया कि हम सीता देवी का जो विग्रह है वो यहाँ पे मेरे बाजू में रखेंगे, और सीता देवी के विग्रह के साथ क्या हम अभिषेक कर सकते हैं, ये राज अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। तो फिर ब्राह्मण ने थोड़ा तरह रख लिया और फिर वो स्वीकार कर लिया। तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र को बिल्कुल आनंद नहीं हुआ था, पर यहाँ पे सीख क्या है कि रामायण टीचेस अस टू सबॉर्डिनेट आवर इमोशंस टू आवर ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल्स, कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए ताकि हमारे कर्तव्य, हमारा जो तत्व है उसके अनुसार हम हमारा जीवन जी सके। तो ये हुआ कर्तव्य के स्तर पर। इसके ऊपर भक्ति के स्तर पर क्या बताया जाता है कि जो हमारे संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में रामायण से ज्यादा विश्लेषण या उसका लेखन नहीं किया हमारे आचार्य ने, पर श्री संप्रदाय ने विस्तार से लेखन लिखी है। तो उसे बताते हैं आचार्य ने, वहां पे गोविंद आचार्य और बहुत से आचार्य ने लिखा है, वो बताते हैं कि एक स्तर से जो भगवान के सब पार्षद है वो दिव्य और शुद्ध है और वो कभी कोई गलती नहीं करते, पर हमारे शिक्षण के लिए वास्तव में कुछ प्रकार से कार्य होते हैं। जैसे रामलीला में है बताया जाता है कि जब गोपियां गर्भित हो गई तो भगवान उनको छोड़ के चले गए, और फिर जब राधा रानी गर्भित हो गई तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। और फिर ये हमारे लिए दर्शाया जाता है कि वास्तव में इस तरह से गर्व भगवान को इतना नापसंद है कि यहां तक गोपियां और राधा रानी गर्भित हो जाए तो उनका भी त्याग कराया। पर वास्तव में ये बाह्य कारण है, ये बाह्य कारण है। आनंदान जपों में वर्णन आता है कि गोपियां सोच रही थी कि हम सब भगवान के साथ है, पर हमसे हमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो राधा रानी है, तो हम सारी दुनिया को दिखा जाते हैं राधा रानी की महिमा। इसीलिए उन्होंने ऐसे नाटक किया कि वो गर्भित हो गई है और भगवान ने उनको त्याग दिया, तो मतलब सारी दुनिया देख सके कि सब गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है पर उनमें से सर्वश्रेष्ठ राधा रानी। तो गोपियों ने गर्भित होने का ऐसा नाटक किया ताकि राधा रानी की महिमा जो है वो सारी दुनिया को दिख सके। और जब राधा रानी अकेले भगवान के साथ थी तो उनको बड़ा आनंद हुआ, पर बाद में वो सोचने लग गई कि मैं अभी भगवान के साथ संग कर रही हूँ पर मेरी सखियां ललिता विशाखा चंपकलता दुर्गलिता वे कितने शोक के विलाप में डूब रही हुई है, वो जब मेरी सखियां इस तरह से शोक के विलाप में डूब रही है मैं कैसे आनंद कर ले सकती हूँ भगवान के संग का, तो कुछ कहा चाहिए मुझे। और तभी राधा रानी ने सोचा और कहा कि तो उन्होंने एक योजना बनाई, तो उन्होंने सोचा कि सखिया जो हमें ढूंढ ही रही होगी और प्रभु जी कृष्ण जो इतने तेज जंगल में जा रहे हैं तो शायद हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक योजना बनाती हूँ। उसने कृष्ण से कहा कि कृष्णा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं भी चल नहीं सकती, तो अगर आप चाहते मुझे कहीं ले जाना तो आपको कोई और योजना करनी पड़ेगी। तो फिर तो भगवान कृष्ण राधा रानी के अंतरंग का भाव समझ गए, पर वो भी एक सीख दिखा जाते, वो बोले बड़े क्रोधित आवाज में बोले तो क्योंकि आप एक महारानी हो और यहाँ जंगल है तो यहाँ पे मैं आपके लिए पालकी नहीं ला सकता, तो इसीलिए आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ और फिर मैं आपको ले जाता हूँ राज महारानी के समान। और फिर बोल के भगवान अदृश्य।
राधा ने देखा कि भगवान अदृश्य होकर भगवान ग्रंथों के चले गए, तो उनकी तो इच्छा थी सारी गोपियां वहां पे आ जाए, पर पूरा विपरीत ही होते तो वहां पर वो बेहोश हो गए।
तो ये तो राधा रानी ने ऐसे क्यों किया गर्वित होने का नाटक? वो इसलिए नहीं किया कि वो गर्वित हो गई थी, वो अपने सखियों को भगवान का संदेश इसलिए किया है। पर एक तो अलग अलग स्तर पे हम सीख ले सकते हैं। तो एक स्तर पे सीख है कि गर्वित हो गए तो भगवान हमारे आप कर देंगे, ठीक उसी तरह से जो रामायण की घटना है उसका एक स्तर पे सीख है कि वास्तव में जो दशरथ महाराज या सीता जी छोटी थी तो उनको भूदेवी से प्राप्त हुई थी, धरती से प्राप्त हुई थी, और जब उनके पास जो त्रम्बकार मुख भुंजत राम जो शिव जी का बड़ा धनुष्य था, तो धनुष्य वो इतना बड़ा धनुष्य कि सैकड़ों लोग उसको हिला भी नहीं सकने में मुश्किल होता था उनको, इतना वो बड़े डब्बे में रखा होता था बड़े विशाल कक्षा में, और उसको हिलाना भी मुश्किल होता था। एक दिन उन्होंने देखा उनकी जो एक दासी थी उन्होंने आके बताया कि सीता देवी को एक फूल तोड़ना था, जब फूल तोड़ना था तो वो तोड़ नहीं पाए तो उन्होंने देखा कि धनुष है, तो धनुष को उठाया और जाके उसको तोड़ दिया। धनुष को उठाया कि धनुष को तो सैकड़ों में उठा कैसे उठा सकती है, तो कैसे उठा सकती है उसको, तो वास्तव में वो उठा नहीं सकती है, पर बाद में वो स्वयं जाके गए धनुष उठाए, हाँ उठाए, कैसे उठा सकती हूँ ऐसे उठा
लिया। तो फिर दशरथ महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए और तभी स्मरण करने लग गए कि मैं तो सीता को मैं छोटी मेरी बेटी मानता हूँ, पर इसका जन्म बड़ा अलौकिक हुआ है और पृथ्वी से प्रकट हुई है। तो फिर उनको बड़ी चिंता हो गई कि सीता इतनी शक्तिशाली है, इसके पति कौन बने, ये इतनी शक्तिशाली है कोई साधारण मानव उसका पति बन जाएगा, ये उसका आलिंगन कर रहे तो स्वानों का क्या हो जाएगा, तो वो चिंता में पड़ गए। और हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है, हम देखते हैं कि सीता देवी इतने आसानी से वो धनुष को शिव जी के धनुष को उठा सकी, पर रावण जब सीता के स्वयंवर में आया था तो रावण भी धनुष को नहीं उठा सका। तो फिर बाद में जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था तो क्या सीता देवी रावण को प्रतिकार नहीं कर सकती थी? तो कई कारण है, एक कारण है कि जो सीता देवी जो रामायण की लीला है उसको विस्तार से हम बोलना चाहेंगे, और दूसरा कारण है कि उस समय असली सीता नहीं थी, उस समय माया सीता थी। तो वास्तव में जो प्रसंग है कि मारीच जब आता है तो उस समय जो सीता बोलती है कि मुझे मारीच चाहिए, ये जो मृग है ये इतना सुंदर है, तो तभी रामाभिरामम राम ऐसे वर्णन आता है रामायण की शरीर का ऐसे कहने का उद्देश्य नहीं है, पर वो क्या दिखा रही कि राम उनके साथ में थे पर वो कुछ और चाह रही थी, राम उनके साथ में है पर वो हिरण चाह रही थी। तो उसके कारण जैसे हम सब आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ थे, पर हम भगवान के साथ होते हुए कुछ और चाहते हैं, उस समय हम भगवत जगत में आ गए, तो ठीक उस तरह से जो कि प्रभु श्री रामचंद्र की उपस्थिति में सीता देवी ने कुछ और चाहा, तो इसलिए क्या हो गया, रावण उनका अपहरण कर सका। और तो रावण का अपहरण हो गया, रावण के द्वारा अपहरण हो गया और अग्नि परीक्षा का शुद्धता है सिद्ध हो गई। पर जब वो जंगल में प्रभु श्री रामचंद्र चले गए और मारीच की जो नकल की सीता के राम के आवाज में, तो तभी सीता ने जो वचन लक्ष्मण को बोले वो पूरे कर दिए। लक्ष्मण पहले बोले कि वास्तव में ही मैं जानता हूँ ये राक्षस, ये राक्षस का आवाज है, राम का आवाज है, राम को कोई कुछ नहीं कर सकता है। शरीर इतने भावुक हो गई थी, भावनाओं से इतनी विचलित हो गई थी कि वास्तव में नहीं राम अकड़े में, तो तुरंत जाओ, बोले नहीं कुछ नहीं हुआ राम को, राम ने बताया मुझे कि आपके साथ वचन करें। तो तभी सीता देवी बोली कि वास्तव में अभी मैं समझ रही हूँ कि तुम जंगल में क्यों आए थे, तुम्हारी ये इच्छा थी कि मेरा भोग कर सके और तुम एक मौका चाह रहे थे, और अभी राम चले गए हैं तो तुम मेरा भोग करना चाहते हो, पर तुम जान लो मैं प्रतिबद्ध हूँ, तुम स्पर्श नहीं कर सकते,
अब ये जो वचन थे इसकी कल्पना भी कभी लक्ष्मण ने नहीं की थी। इस तरह से लक्ष्मण ने क्या बोल रही हो, और तुम इस तरह से बोले तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं जानता हूँ मुझे वापस आऊंगा तो यहाँ पे नहीं रहूंगी। फिर भी लक्ष्मण रेखा बनाई और चले गए। तो आचार्य ने बताते हैं कि हमारा आध्यात्मिक पतन दो कारणों से होता है, एक है भौतिक इच्छा, दूसरा है अपराध। तो इस लीला में दर्शाते हैं तीसरा दिन राम के अस्तित्व के उपस्थिति में हिरण का इच्छा की, उसके कारण राम से विरह हो गया। क्योंकि इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, उसके कारण उसको वनवास में जाना पड़ा, उसको बाद में भी उनसे विरह हो गया। तो वास्तव में ये दर्शाते हैं रामायण ने कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अपराध करता है तो अपराध का फल होता है। और यह जो तत्व है भागवत में भी दिखाते हैं कि जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे शाम और यदुवंश थे, भगवान के पार्षद थे, वे भी जब ब्राह्मण का अपराध करते हैं तो उनको उसका फल मिलता है। यहाँ तक कि चैतन्य लाल बताते हैं शशि देव जब अद्भुताचार्य का अपराध करती है तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है, और जब वे अद्भुताचार्य चरण भी लेती है तो भी उनको माफी मिलती है। तो ये एक स्तर है, तो जैसे हम जानते हैं ये केवल एक स्तर है हमारे सीखने के लिए। वास्तव में सर्वोच्च कारण क्या है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कि भगवान का जो स्मृति है वह सबसे तीव्र होती है उनके विरह में। और देवी ने इतनी प्रामाणिकता से भक्ति की थी, इतनी शुद्ध भावना से भक्ति की थी कि प्रभु श्री रामचंद्र उनको भक्ति का सर्वोच्च रस जो है वो प्रदान करना चाह रहे थे, और भक्ति का सर्वोच्च रस जो है वह विरह प्रेम है। तो इसी वो विरह प्रेम का रस प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं अनुभवना चाहते थे और चखना चाहते थे, और सीता देवी को भी चखना चाहते थे। अभी जो विरह प्रेम जो है वह वास्तव में आनंद नहीं लगता है भौतिक दृष्टि से, वो भौतिक दृष्टि से बड़ा दुख लगता है, पर भौतिक दृष्टि से हम केवल अपूर्ण चीजें देख सकते हैं। जैसे कुछ पिछले भाव बता रहा था कि भगवान कृष्ण का स्मरण अगर है वो अमृत के समान है, तो अगर भगवान कृष्ण का स्मरण जो है वह उनके संभोग उनके संग के साथ है तो वो मीठा अमृत है, अगर भगवान कृष्ण का स्मरण जो है उनके वियोग में है तो वो कड़ु अमृत के समान है, पर दोनों अमृत ही है। तो भगवान रामचंद्र उस तरह को सर्वोच्च रस प्रदान करना चाहते थे और स्वयं भी सर्वोच्च रस स्वीकारना चाहते थे। तो वास्तव में एक तरह से वो जो विरह का रस था वो उन्होंने जब सीतादेवी लंका में चले गए थे तभी भी अनुभव था, पर तभी वो जो विरह था वो जबरदस्ती आ गया था। और वह ऐसे अगर कोई हम जबरदस्ती अगर शरणागति होती है तो शरणागति नहीं होती है। अगर कोई बोलता है किसी को आप बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो तो मैं आपको गोली मारूंगा, तो वो हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा तो उसमें प्रेम नहीं है और वो वास्तव में शरणागति नहीं है। जो भगवान शरणागति बोलते हैं सर्वधर्मान परिस्थिति वो शरणागति है, प्रेम की शरणागति, स्वेच्छा की शरणागति। तो स्वेच्छा से श्री रामचंद्र सीता देवी ने विरह स्वीकार किया ताकि वो ये जो प्रेम रस का अनुभव है वो कर सके। तो वास्तव में जो माधुर्य रस है उसका अधिक भाव रामायण में नहीं आता है। रामायण में प्रभु प्रधान भाव में दिखता है वो दास्य रस है, पर जो माधुर्य रस है वह चित्रकूट में जब सीता राम रह रहे होते तभी कुछ प्रसंग है जब वो माधुर्य रस दिखता है। और ये माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा है वह सीता देवी के बाद में मंत्र का वनवास के बारे में दिखाई देता है। तो वास्तव में भगवान जो कर रहे हैं वह उसके लिए बहुत पूज्य कारण है, और हमें भगवान की लीलाओं को हमारे दृष्टि से नापना नहीं चाहिए। वास्तव में हम भगवान ने संदेश दिया है उसको समझ के हमारे दृष्टि को बदलना चाहिए। क्या एक उदाहरण देखा अपने विराम दूंगा, समस्या क्यों आती है क्योंकि हम सबसे पहले भगवान के कार्य को देखते हैं और फिर उनके तत्वों को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर इसने ऐसा कार्य किया है तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अगर इस तरह से वनवास में भेज दिया अपनी ही पत्नी को तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो हम पहले कार्य को देखते हैं और इस बात में पद या तत्व को देखते हैं। वास्तव में ऐसे करेंगे तो हमेशा हमें गलत फहमी होगी। जैसे सबसे पहले हमें पद को समझना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए और फिर वो भगवान के कार्य को समझना चाहिए। मान लीजिए कोई जंगल में रहने वाला कोई आदिवासी है जिसने कभी डॉक्टर को देखा नहीं है, खासकर सर्जन को जो ऑपरेशन करता है उसको नहीं देखा है, और शहर में आता है अस्पताल में आता है, और अस्पताल में आता है वो देखता है कि ये कोई अच्छा खाना देखने वाला व्यक्ति उसको एक बिस्तर पे गिरा जाता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, चाकू निकालता है, उसका पेट फाड़ जाता है, और पेट फाड़ता है वो बोलता है अरे क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो मार रहे हो मार रहे हो, और उसे सुनता है चुप बैठो। फिर बाद में उसके रिश्तेदार हुआ जाकर होता है क्या है, वो तुम्हारा जो रिश्तेदार है उसको मार रहा है, वो हत्यारा है, रोको उसको, क्या होता है कोई उसके ध्यान नहीं देता है। और फिर बाद में जब डॉक्टर आता है बाहर, अभी तो उसको डांटो आप उसको मारो, तो क्या करते हैं रिश्तेदार, उसको पैसा देते हैं। तुम पागल हो गए क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुप बैठो उसको बोले क्यों, क्योंकि जो सर्जन है जो उसका जो पद है उसका जो तत्व है उसका जो कर्तव्य उसको पता नहीं है, तो वो कार्य को देखता है पर पद को जानता नहीं है, उसके कारण वो गलत फहमी करता है। ठीक इसी तरह से लोग क्या करते हैं, वो भगवान का भगवत्व जो है भगवत तत्व जो है वो जानते नहीं है। और ये भारत की समस्या है कि जो रामायण है विष्णु कृष्ण अभी आया है, अच्छा एक तरह से मनोरंजन की दृष्टि से, पर इसमें भगवान का तत्व जो है वो बताया नहीं जा रहा है। तो उसके कारण लोग सोचते अरे इस व्यक्ति ने ऐसे कार्य किया तो ये भगवान कैसे हो सकता है। तो वास्तव में हमें क्या सोचना चाहिए कि अगर भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसका कारण क्या, उसका जरूर कोई कारण होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र ने अन्याय किया, पर वो देखते हैं भक्तों को आकर बोलते तुम ऐसे व्यक्ति को क्यों गुणगान कर रहे हो, क्या करते वो केवल उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं, उस व्यक्ति के प्रभु श्री रामचंद्र के इस जिला का भी गुणगान करते हैं। तुम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता तत्व, जन्म कर्म तत्व के साथ हम समझते हैं तो फिर गलत फहमी नहीं होती। तो ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जो वैदिक संस्कृति भारत में अभी भी है, तो भारत में संस्कृति है पर तत्व ज्ञान नहीं है, और उसके कारण जो संस्कृति है उसके बारे में बहुत भ्रांत धारणाएं आ गई है। प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य ने तत्व ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान का हम सक्रिय और तेजी से विचार अगर करेंगे तो संस्कृति का दर्शन कर सकते हैं, बहुत से लोगों को भक्ति में लाकर उनका परम कल्याण कर सकते हैं, उससे हम भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सारांश में चर्चा की आज कैसे कि भारत में बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं खासकर के रामायण के बारे में, क्योंकि तुलसी रामचंद्र का अधिकांश चरित्र आदर्श है पर कुछ विवादास्पद है। तो हमने सीता देवी से अन्याय हुआ इसके क्या प्रश्न के उत्तर में तीन स्तर में उत्तर देखे, सबसे पहले कर्तव्यनिष्ठता के स्तर पे, तो वैदिक संस्कृति न तो दैवत को स्वीकारती है न तो अधिकार को स्वीकारती है, अधिकार को बड़ा मानती है, दोनों को मानती है तो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यनिष्ठता है। और रामायण दिखाता है हमें कि अन्याय सबके जीवन में होता है, एक जन्म की दृष्टि ले गए तो अन्याय की प्रतिक्रिया कर्तव्यनिष्ठता को बनाए रखते हुए कब कैसे रख सकते हैं, वो कैसे करनी चाहिए वो दिखाया गया है रामायण में। तो वह प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से देखते हैं और सीता देवी के जीवन से देखते हैं। तो जब दो चुनाव होते हैं दोनों नैतिक है तो फिर कैसे चुनना चाहिए वो प्रभु श्री रामचंद्र हमें दिखाते हैं कि उन्होंने एक आदर्श पति के रूप में सीता का रक्षण भी किया और आदर्श राजा के रूप में वैराग्य का दर्शन भी किया, सीता को अपने राजमहल से राज्य देगी जो वाल्मीकि ऋषि ने आश्रम में लेकर, और फिर भक्ति के तत्व में देखा कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अगर वो भौतिक इच्छा करता है तो उसको उसका फल मिलता है और कोई अपराध करता है तो उसका भी फल मिलता है। तो जो किरण की इच्छा थी शरीर ने उसके कारण ऋषि रामचंद्र के विरह हो गया, रावण ने उनका अपहरण कर लिया, लक्ष्मण ने अपराध किया फिर उनको वनवास में जाना पड़ा। और रस के तत्व में देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र सीता देवी को और स्वयं जो भक्ति का सर्वोच्च रस है मेरे प्रलंब प्रेम वो रस चखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। और अंत में देखा तत्वों को समझ कर हम कार्य को देखते हैं तो सही अच्छी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
की सीता देवी की, तो श्री रामचंद्र भगवान की, कंथराज भागवतम की, शुक्रपाल की, गौर भक्तवृंद की।
थैंक यू।